السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اسی عمر کا ایک خاص آپ کہہ لیں کہ کوالٹی ہوتی ہے، وہ اس عمر میں وہ بچہ ویسے ہی بیہیو کرے گا. اکثر میں نے خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ اسی چیز پہ اپنے آپ کو تھکاتی رہتی ہیں. مثلاً اگر میں آپ کو پوچھوں سال کا بچہ جو ہے وہ کیا کرے گا یہاں پہ، اگر اس کو اس ہال میں لایا جائے کیا کرے گا؟ یا کرال کر رہا ہوگا یا چل رہا ہوگا اور ہر چیز کو چھیڑ رہا ہوگا. اس کو کوئی یہ پریشانی نہیں کون بیٹھے ہوئے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اس نے ہر چیز کو چھیڑنا ہے. اور اس کی والدہ کیا کر رہی ہوں گی؟ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گی، شکل پہ غصہ، پریشانی. کئی دفعہ اگر زیادہ آڈینس ہو تو امبیرس بھی ہوتی ہیں کہ شرمندگی کا کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، اور کبھی اس کو ہاتھ پکڑتی ہیں، کبھی اس کو ادھر کھینچتی ہیں، کبھی کہتی ہیں کیا مصیبت ہے، اس کو میں کدھر لے کے جاؤں، یہ بیٹھتا نہیں ہے. جو ٹاڈلر ہوتا ہے، جو 1.5-2 سال تک کا بچہ جو اس عمر سے کم کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے اندر انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھنا شروع کر رہا ہے، اس کو کانسٹنٹ توجہ چاہیے. اگر کوئی اس کے پاس ارد گرد نہیں ہوگا، آپ اسے کاٹ میں یا بیڈ میں لٹا کے چلے جائیں، وہ رونا شروع کر دے گا. اس کو کوئی نہ کوئی پاس چاہیے جو اسے نظر آتا رہے. تھوڑا سا اور بڑا ہوگا، کرال کر رہا ہے، وہ نہیں تھکے گا کرال کر کر کے، آپ تھک جائیں گے. اچھا، اسی طرح جب وہ چلنا شروع ہو گیا تو وہ چیزیں چھیڑ کے نہیں تھکے گا، لیکن آپ اٹھا اٹھا کے تھک جائیں گے. اس ٹائم پہ اکثر مائیں کیا غلطی کرتی ہیں، مارتی تو ہیں اور کیا کرتی ہیں، ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب ٹی وی کے سامنے بٹھاؤ نا تو شکر ہے آرام سے بیٹھ جاتا ہے، بڑا سکون ہو جاتا ہے ذرا گھر میں. اور جیسے ہی وہ ٹی وی کے آگے بیٹھتا ہے، یوں کر کے اس کے منہ میں نوالے ڈالتی جاتی ہیں، وہ منہ کھولتا جاتا ہے اور وہ نوالے ڈالتی جاتی ہیں. اور بہت سی ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بچے کو پہلے 2 سال میں بالکل ٹی وی سے ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. 100% نو ہے، 100% نو. اس لیے کہ جب بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ کوئی گیم لگی ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی میں اس کو جو ہے نا وہ اسلامک سانگ سنواتی ہوں یا اسلامک پروگرامز دکھا رہی ہوں، لیکن under 2 years جب آپ بچے کو ایسی چیزیں دیتے ہیں جو صرف وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پیسو ہے اور وہ صرف دیکھ رہا ہے، تو اس کی یہ جو دماغی گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ایسا ہے کہ وہ چیزوں کو ٹچ کر کے وہ چیزوں کو چیک آؤٹ کرتا ہے. تو آپ لوگوں کا کام گھر میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز دیکھیں جس میں بچے کو ٹچ کرنے کے لیے چیزیں ملیں. اس کا کوئی باکس بنا سکتے ہیں، اس میں تھوڑے سے کھلونے رکھ سکتے ہیں. اور بلیو می، اس عمر کے بچوں کو کوئی بہت مہنگی چیز نہیں دینی پڑتی. آپ اگر مختلف قسم کے پتھر بھی دھو کے رکھ لیں گے نا، یا مختلف قسم کی یہ کوئی پتا ہے، کوئی ڈفرینٹ کوئی سافٹ چیز ہے گھر میں پڑی ہوئی ہے، کوئی سخت چیز ہے، بچے کو صرف ٹچ کروائیں، اس کو کلر فیل کروائیں. پھر یہ کہ اس بچے کو کھیلنے کی ایسی جگہ دینی چاہیے، اور جتنی آپ کے گھر میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں یا ان کو وہ بار بار چھیڑے گا، وہاں سے اٹھا دیں. ہمیں گھر کو سجانے کا اتنا شوق ہوتا ہے، ہمیں اتنی چیزوں کا رکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم بچے کو چیزیں نہیں چھیڑنے دیں گے یا اپنی وہ چیز پوری کرنے دیں گے، ہم گھر سجاتے رہیں گے. یہ اس کو ساتھ ساتھ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے، یہ نہیں کہ دیواروں پہ لائنیں ڈال دے، چیزیں توڑنی شروع کر دے. لیکن اب وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہاں پہ اگر یہ 2-3 چیزیں پڑی ہوئی ہیں اسٹیبل پہ، تو اس نے آ کے ضرور اس کو چھیڑنا ہے. تو آپ وہ چیز نہیں رکھیں یہاں پہ، آپ اس کو سیف جگہ پہ رکھیں، اندر جو ہے سنبھال کے رکھیں. پھر ایک اور بیہیویئر میں اس بچے کی چیز آتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ماں کی گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا، اب اس کے بعد جب وہ 4-6 ماہ کا ہوا، خوراک شروع ہو گئی، اب خوراک شروع ہوگی، اب اس کے بعد اس نے بیٹھنا شروع کیا، اب وہ دنیا نظر آ رہی ہے اسے، اب اس نے کرال کرنا شروع کیا، اب اس کے بعد اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے، اب وہ چلنا شروع کر رہا ہے. اور جب وہ بچہ چلنا شروع کر رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں خود دروازہ کھولوں، میں خود سارے کام کروں. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بچوں کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کام سکھانے شروع کرنے ہیں. ڈینجرس چیزیں ان کی پہنچ سے دور رکھنی ہے، خطرناک چیزیں جتنی بھی ایسی ہیں جیسے سوئچز وغیرہ ہیں، وہاں پہ آپ نے ٹیپ لگا دینی ہے. اور ہر بات پہ ان کو ٹوکنا نہیں ہے، ان کو اب آپ نے ڈائیورٹ کرنی ہے توجہ ان کی. تو اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ اس کی کیا کیپیبلٹی ہے. کچھ بچے اس عمر میں بہت سمجھدار ہوتے ہیں، बहुत सुलझे हुए लगते हैं, तो आप उनके साथ बैठ जाएं और जैसे उन्होंने कहा पजल दे दें, वो पजल बनाना, बड़े बहुत बड़े साइज के पजल मिलते हैं वो बनाना शुरू करें। आप यहां तक कर सकती हैं कि कुछ खुद से कुछ चीजें ऐसी जो आप जिन चीजों से आप इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं, मसलन शायर अल्लाह जैसे हैं, काबा है, अल्लाह ताला का नाम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, इस तरह के फ्लैश कार्ड बना के, कार्ड बना के और उसके ऊपर वो चीजें या चिपका के जो दिखाने वाली चीजें हैं वो चिपका दें, कुरान पाक है वो दिखाना, शुरू से उनको पता चले कि ये जो चीज है ये हमारे दीन का हिस्सा है। सब लोग समझते हैं मिट्टी जो बच्चे खाते हैं कैल्शियम की कमी होगी इस वजह से वो बच्चा खा रहा है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसको साइकोलॉजिकल बीमारी समझा जाता है, नफसियाती बीमारी होती है ये, इसमें उसके टेक्निक्स होती हैं, वो मैं डिसिप्लिन में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ओवरऑल कोई भी मसला हो आप उसमें वो टेक्निक्स यूज करेंगे। जो बच्चे आपके बहुत एक्टिव होते हैं इस एज में उनको आप इस किस्म की एक्टिविटीज करवा सकते हैं, छोटा सा कोई जंप करने के लिए मैट्रेस टाइप रख सकते हैं, गद्दा रख सकते हैं, पुराना गद्दा पड़ा हुआ है उसको एक कोने में रख दें, उससे जंप करने दें उसपे, और आप उसपे भी उसको दुआएं सिखा सकते हैं जब वो जंप कर रहा है, कुरान पाक की कहीं तिलावत लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे सुन के सेटल होना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे काम उसे करवा सकते हैं, जाओ मुझे जाय नमाज ला के दो। वो हर चीज 100% सही नहीं करेगा लेकिन आपने उसकी एनर्जी को डायरेक्शन देनी है। वो आधी बातें आपकी मानेगा आधी अभी नहीं मानेगा, छोटा है ना बहुत ज्यादा, लेकिन ये कि जैसे जैसे आप उसे बताती जाएंगे वो अपना काम जो है वो करना शुरू कर देगा। अच्छा, इस उम्र में बच्चों का एक और बिहेवियर भी होता है, ये बहुत सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपनी चीज नहीं देते और हम जबरदस्ती ले लेके अल्लाह की खातिर इससे भी शेयर करो, ये भी बहुत छोटे हैं, रोना शुरू कर देंगे और उसी को लेके बैठे रहेंगे, किसी का कोई ब्लैंकेट है, कोई तकिया है, मतलब कोई ना कोई आपको चीज नजर आ जाएगी जिसके साथ ये अटैच्ड है, कोई खिलौना ऐसा पसंद है वो टूट भी गया है वो फेंक नहीं रहे, नया भी आपको मैं वैसा ला दूं, नहीं उनको नहीं चाहिए। अभी वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकते कि हम कैसे शेयर करेंगे। 2 साल से कम उम्र के बच्चे अगर खेल रहे हो आप अक्सर देखेंगे कि वो दोनों अपने अपनी चीज से खेलते रहते हैं, और अगर उनमें से दूसरे की चीज पसंद आ गई तो वो शेयर नहीं करेंगे, वो कहेगा मुझे पूरी मिल जाए। तो आप इस वक्त उनसे फौरन शेयर नहीं करवा सकेंगे, आप उनको बताएंगे जरूर हम शेयर करते हैं, हम मिलके खेलते हैं, हम एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि वो सुन रहे हैं वो सीख रहे हैं, लेकिन आप करेंगे क्या कि तरीके से उनको जो है खिलौने देंगे या उनका एरिया डिफाइन करेंगे ताकि उनको पता हो अब इतनी देर मैंने खेलना है, अब इतनी देर किसी और ने खेलना है, या अगर मुझे उसका खिलौना चाहिए तो उसका खिलौना मुझे इसको देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसके हाथ से बस लेके दूसरे को दे दें कि नहीं जी ये इसको जो है वो दे दो। तो माँ को समझना पड़ेगा कि अभी इस बच्चे को कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्ड जरूर आपने करना है लेकिन अभी वो बहुत छोटा है कि वो ये इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। फिर इन बच्चों में स्ट्रेंजर्स के बारे में डर फियर होता है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा ऐसे लोग इर्द गिर्द नजर आए कि जिनको वो नहीं जानते तो रोना शुरू कर देते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनको होता है कि हमारी माँ साथ हो या कोई भी जो घर का कोई शख्स है, वालिद हैं, वालदा हैं, कोई नाना नानी दादा दादी, अगर आप एकदम कोई बच्चा वो इधर होगा वैसे खेल रहा होगा उसको पता है मेरी वालदा करीब है, लेकिन अगर वो कहीं बाहर निकल गया और वालदा इधर बैठी है वो रोना शुरू कर देगा क्योंकि उसको नहीं अब समझ आ रही, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैंने अपनी मम्मी के पास जाना है, तो वो रोएगा। इनमें एग्रेसिव बिहेवियर भी होता है, एग्रेसिव बिहेवियर जैसे तोड़ फोड़ करना चीजों की, खिलौना आप देंगे तो तोड़ देंगे, चीजें जो आप देंगे उनको वो खराब कर देंगे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आपको कोई बताया तो आप ये नहीं है कि हैं अच्छा अस्तगफुरुल्लाह आपका बच्चा तो नहीं ऐसे, या ये कि कई दफा होता है कि कोई बहुत दीनदार शख्सियत हमें नजर आती है और उसका बच्चा इस तरह बिहेव करे तो हम कहते हैं लोग खुद तो बहुत दीनदार लगती हैं और बच्चे की कोई तरबियत ही नहीं की हुई। तो बच्चा जो है वो फितरत पे है ना, उसमें कुछ चीजें एज अप्रोप्रिएट होंगी, अब उनका माहौल जो है वो उनको सिखाएगा। अब हमारा काम कहाँ आ जाता है, अब जहां पे हमने डिसिप्लिन करना है, अब हम डिसिप्लिन किस तरह से करेंगे। इनको डिसिप्लिन करने के लिए जो है एक चीज तो आपको माइंड में रखनी है कि आप जो भी चीज उनको सिखाएंगे ये हर थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, इनकी मेमोरी बहुत छोटी होती है। ये नहीं कि 100 दफा मैंने इसको बताया है ये ग्लास यहाँ पड़ा है इसको नहीं छेड़ना, वो फिर छेड़ता है, आप उसको 500 दफा भी बताएंगे तो उसने छेड़ना है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपको बहुत सब्र चाहिए। ये जो हम हर वक्त कहते हैं ना बच्चों में हमारे सब्र नहीं है आजकल, क्यों नहीं है जरा बताएं, माओ में नहीं है, घर में जो और बाकी बुजुर्ग हैं उनमें नहीं है, खुद हम कहीं पे सब्र का मुजाहिरा नहीं करते तो बच्चे में कैसे ट्रांसफर होगा। फिर ये कि इस उम्र में रीजनिंग इनके साथ डिसिप्लिन करते हुए याद रखना है कि वो नहीं काम देगी। मसलन अगर आप उसको 10 दफा भी बताएंगे कि बेटा ये ग्लास टूट जाएगा, उसके नजदीक इसकी इंटेंसिटी नहीं है कि टूट जाएगा, ये लग जाएगा, चोट आ जाएगी। हम तो खैर इस तरह नहीं डराते, हम तो कहते हैं भू बाबा आ जाएगा, पापा खा जाएगा। इस तरह की हमने अजीबो गरीब जुमले बनाए हुए हैं कि हम बच्चों को शुरू से इन चीजों के बारे में डराते रहते हैं। फिर हम कहते हैं डरता भी नहीं है। उस दिन ही एक खातून बच्चे को किसी बात पर डरा रही थी, तो मैंने उनको कहा कि इस तरह नहीं डराया, कहती ये डरता ही नहीं है, इसको नहीं असर ही कोई नहीं होता। लेकिन वो सुन तो रहा है, वो अपने सिस्टम में तो ले जा रहा है। अब जब उसकी कोई डरने की भी उम्र आएगी तो जिस चीज से डरना चाहिए उससे तो डर नहीं आएगा, जिस चीज से नहीं डरना चाहिए उसके अंदर वो जो डर है वो बहुत ज्यादा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कि डिसिप्लिन के लिए इस उम्र के बच्चों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, सबसे अहम चीज ये है कि आपने अपना माहौल चाइल्ड फ्रेंडली बनाना है। उस कमरे में ना बच्चे को लेके जाए जहां आपकी ऐसी बहुत सेंसिटिव चीजें पड़ी हुई हैं। मोबाइल फोन उससे दूर रखें, वो तोड़ देगा। कंप्यूटर पे उसको नहीं बटन्स को प्रेस करने दें, खराब कर देगा। अब कोई किताब आपकी अहम है नहीं दें, हो सकता है वो पेज फाड़ दे। ये नहीं कि आप किताब दें और साथ ही के पेज नहीं फाड़ना। हम कई दफा नेगेटिव मैसेज इस तरह भी देते हैं, पानी का गिलास देते हैं, कहते हैं गिराना नहीं, बच्चा साथ ही। या जैसे मिट्टी खाने की उन्होंने बात की, अब वो बच्चे को क्योंकि वो एक्टिविटी नहीं, उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, वो ऐसी उसने एक दफा मिट्टी खाई, अब माँ ने देख लिया, अब सब डिस्कस करें मिट्टी खा ली, अब वो क्या होगा, वो फिर जाएगा मिट्टी, क्योंकि उसको याद दिला रहे हैं हम बार बार। याद नहीं दिलाना उसको, उसका ध्यान बटाना है आपको, उसको फौरन दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जो करना है और उसको उसमें एंगेज किया, और मीन वाइल वो ये जो चीज ऐसी होती है उसको छुपा लिया, और वो वापस एक दफा टर्न होगा आपके लिए। अब इसमें बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस बच्चे की शॉर्ट टर्म मेमोरी है, इसको भूल जाएगा थोड़ी देर के बाद कि यहाँ पे कोई ग्लास भी था। हम कई दफा कहते हैं ना 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 ना, ये नहीं भूलता, इसलिए नहीं भूलता कि हम बार बार कहते हैं कि नहीं ग्लास नहीं मिलेगा। अब जब जितनी दफा हम कह रहे हैं अब उस बच्चे को याद दिला रहे हैं हम। अच्छा, इन सब चीजों का असर ये होता है जब हम सही हैंडल नहीं करते, हम झुंझलाए रहते हैं, हम कहते हैं तबीयत कैसे करूं, तौबा ये तो टिकता ही नहीं, ये बैठता ही नहीं, चीजें छेड़ता है, ये खाना नहीं खाता। तो इनके लिए फिर ये होता है, इसको हम हमेशा कहते हैं कि इनकी अटेंशन को डाइवर्ट करना है आपने, तो इसको बहुत तरीके से और बहुत सीरियस रह के जो है आपने उसका ध्यान किसी और तरफ लेके जाना है और उसको सही चीजें बताते रहना है। फिर इसमें एक और चीज होती है कि कुछ चीजों में डिसिप्लिन करने के लिए आपको बहुत डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मसलन किसी बच्चे ने पेन पकड़ा, 1.5-2 साल के बच्चे को मार्कर पेन नजर आ जाएगा, वो खोलेगा और जहां मर्जी लाइनें डालेगा, ये करने नहीं देना उसको। आपने उसका हाथ पकड़ना है, उसकी आंखों में देखना है, उसके हाथ से बहुत आराम से वो पेन लेना है, बेशक वो रो रहा है, और उसको कहना है कि पेन से हम इधर नहीं लाइन डालते अगर आपको लगता है कि वो बाज नहीं आएगा, और पेन को गायब कर देना है। वो थोड़ी देर रोएगा, उसके बाद वो अपना काम करने लग जाएगा, और उस दौरान में आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल रिलैक्स होगी। हम ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, पहले पेन लिया, फिर चपेड़ लगाई, फिर बदतमीज, फिर उसको पेन रखा, फिर उसको अंडा तुमने पेन लिया ना, बाथरूम में बंद कर दूंगी, बाबा आ जाएगा, बाबा खा जाएगा आके, पेन के अंदर से बहू निकल आएगा। अजीबो गरीब हमने वो कहानियां उसको सुनाई हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उसे बार बार याद दिला रहे हैं कि तुमने क्या गलत काम किया, उसको पुख्ता करें। एक सेंटेंस, एक जुमला, जैसे देखिए ना, सुन्नत का तरीका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी बात करते थे, मुख्तसर करते थे, लेकिन क्या था उसमें फसाहत और बलागत होती थी कि बात पहुंच जाती थी। बेटा पेन दीवार पे नहीं, इधर नहीं, पेपर लें और उसके ऊपर लिखें, और पेपर दे भी दिया अगर बच्चा लिखना चाह रहा है। लेकिन अगर वो जैसे ही दोबारा करे, पेन उठाया उधर रख दिया, बच्चा रो रहा है रोने दे, आप आराम से थोड़ी देर अपना काम करें, वो चुप कर जाएगा। वो सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि इनका गुस्सा कितना चढ़ता है। हम कई दफा कहते हैं नहीं नहीं मैंने बड़ी देर बर्दाश्त किया, वो बर्दाश्त में हम कैसे कर रहे होते हैं, मुंह पे 12 बजे हुए, दूसरे कहते हैं दिल चौरस लगाऊं, और इधर देख रहे उधर देख रहे, एक उधर से पूछ रहा है, वो बुजुर्ग जो होते हैं घर में वो भी क्यों रो रहे, भी क्यों, पता नहीं क्या है इसको। अब वो डिस्कशन हम पूरी कर रहे हैं, हम अपनी तरह से सोच रहे हैं, हम इसको कुछ नहीं कह रहे। बेस्ट होते हैं उस वक्त सब अपने अपने काम, कोई अखबार पढ़ रहा है अखबार पढ़े, कोई कुरान पढ़ रहा है वो पढ़े, नमाज है अब आराम से नमाज पढ़े। वो थोड़ी देर रोएगा, उसके बाद जब उसे लगेगा कि इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा, वो आराम से अपना चीज छोड़ के वो कुछ और एक्टिविटी करेगा। कुछ नहीं होता बच्चे को, बच्चों को आपने तब नोटिस करना है जब वो अच्छे काम कर रहे हैं। मसलन अगर वो भी बच्चा जो पेन लेके दीवार पे लिखता है, जैसे ही वो पेपर पे लिखेगा उस वक्त आप क्या करेंगे, उसकी उसकी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे। ये जो मुस्कुराहट है ना, ये बहुत अच्छा बच्चे को डिसिप्लिन कर देती है बहुत से कामों में। गलत चीज पे नहीं मुस्कुराना। हम क्या करते हैं, गलत चीज पे बहुत चीखते चिल्लाते हैं, और जब सही चीज होती है तो उस पर हम ताना देते हैं, हैरत है आज कैसे, आज दीवार पे लाइन नहीं डाली। कभी ये नहीं कहना कि देखा आपने दीवार पे आज लाइन नहीं डाली, आप कितना अच्छा काम करें, अब आप फिर उसको गलत काम याद दिला रहे हैं। तो हमेशा छोटे बच्चे को सीधी सीधी बात करनी है। अभी वो रीजन नहीं समझ सकता, 2 साल से जब ऊपर हो जाएगा फिर उसको रीजन समझ आने लग जाएगा। 2 साल से पहले सिर्फ आप ये बताएंगे। हमारे पास यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ना फ्राइडे को क्लास में, तो हम 2 से 3 साल के बच्चे को सिर्फ चीज बताते हैं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम ऐसे किया हमने वैसे करना है, हमने कुरान खोला अल्लाह ताला ने ये बताया हमने ऐसे ही करना है, बस हम ये बताते हैं। और बहुत ज्यादा रीजंस नहीं देते, ये जरूर बताते हैं क्यों मान रहे हैं, अल्लाह ताला अल खालिक हैं, अब खालिक को एक्सप्लेन किया, अल खालिक को अल राजिक हैं, ये बताया, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब जब बच्चे जरा बड़े होते हैं उनकी रीजनिंग और तरह की होनी शुरू हो जाती है, उनको और तरीके से फिर वो उन्हीं चीजों को समझाया जाता है, क्योंकि अब ये बच्चे रीजन समझ सकते हैं, उनसे पूछ भी लिया जाता है कि क्यों मानेंगे, किस वजह से हम ये काम करेंगे। जितना छोटा बच्चा है वो रीजनिंग के बगैर आप उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से बस एक स्टेटमेंट दे देते हैं, हम ऐसे बैठ के खाना खाएंगे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खाते थे, हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान ऐसा काम नहीं करता, बस खत्म। उनको इतनी बात जो है बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाती है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो मैसेज जो है उन तक चला जाता है। अच्छा, अब तरबिया हम उनकी कैसे करेंगे, कुछ चीजें मैंने आपको स्टैंडर्ड बताई हैं। मसलन क्या बताया था, वालदा शुरू से तिलावत करेंगी भी सुनेंगी भी, उससे बच्चे का जो कुरान पाक का जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा। दुआएं पढ़ेंगी, बच्चे को खाना खिलाते हुए दुआ पढ़नी है, बच्चे को वॉशरूम ले जाते हुए दुआ पढ़नी है, बच्चे को लिबास पहनाते हुए दुआ पढ़नी है, बच्चे के साथ सफर में बैठे हुए आपने दुआ पढ़नी है, बच्चा आपसे हर वक्त वो चीजें सुन रहा है। आप रोल मॉडल किन किन चीजों का कर रही हैं, बच्चा हाइपर है, माँ में तहम्मुल है, माँ बच्चे के साथ झूठ नहीं बोल रही, गलत चीजों से नहीं डरा रही, अल्लाह ताला का तारुफ दे रही है कि हम अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह काम करते हैं। ये चीजें अब उस बच्चे के अंदर जा रही हैं, लगातार जा रही हैं, लगातार वो लग रहा है उस पर असर कोई नहीं हो रहा, लेकिन उसके अंदर वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बन रही है। अब तरबिया करने में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, छोटे छोटे गेम्स के जरिए भी बहुत सी चीजें आपने उनको सिखानी है। मसलन ये हम खेल रहे हैं तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, जब वो अपनी गेम खेल रहे हैं उस वक्त पीछे से कुरान पाक की तिलावत आपने लगा दी, जब अजान हुई उस वक्त आपने जो उसका तरीकाकार है वो सारा उनको सिखाया कि अजान के वक्त हमने क्या करना है। 2 साल तक की उम्र के बच्चे को क्या क्या सिखाना शुरू कर देते हैं, पेंसिल पेन पकड़ना, चम्मच पकड़ना, किस हाथ में पकड़ने का सिखाना है, राइट हैंड में, ये याद रखना है। कुछ बच्चे लेफ्ट हैंडेड होते हैं, जैसे मैं भी लेफ्ट हैंडेड हूं, लेकिन मेरे वालदैन ने हमेशा मुझे खाना किस हाथ से खाना सिखाया, राइट से। तो लिखती मैं लेफ्ट हैंड से हूं लेकिन खाती मैं राइट हैंड से हूं, क्योंकि उन्होंने शुरू से टोका इस चीज पे कि खाना लेफ्ट हैंड से नहीं खाना। जब मेरा लेफ्ट हैंड जाता था वो मुझे टोकते थे, तो मुझे खाने की आदत जो है वो राइट हैंड से ही है। कोई बहुत ही शायद कोई एक्सेप्शनल केस होगा जो कि नहीं खा सकेगा, वो फिर एक बीमारी की हालत में आ जाएगा। और हर चीज में जूता किस तरह पहनना है, उसमें कौन सा पांव पहले डालना है, कौन सा बाद में निकालना है, उनकी आदत में डाल दें। दांतों को ब्रश करना सिखा रहे होते हैं, मस्वाक भी ला के दें उसे, उसे शुरू से आदत डालें कि वो मस्वाक करें। फिर इसी तरह आप उस बच्चे को सलाम सिखाएं, आप उसको सलाम करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को खुद सलाम करते थे। हम क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं लो ये बच्चा मुझे सलाम करे तो फिर मैं वालेकुम अस्सलाम कहूं। और फिर अक्सर माओं को मैंने देखा है कि छोटा बच्चा बार बार कह रही है उसको सलाम करो सलाम करो, अब वो बच्चा नहीं करता, अब वो बेचारी शर्मिंदा हो रही है और वही बात बाकी लोग देख रहे हैं कि इसका बच्चा सलाम क्यों नहीं करता। कुछ लोग कह भी देते हैं कि तुम अच्छी दीनदार हो, तुमने अपने बच्चे को तमीज ही नहीं सिखाई कि ये सलाम करे। तो देखिये कि सुन्नत का तरीका यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को हमेशा खुद सलाम किया। तो बच्चों को आपने हैबिट बनानी है, जहां आपको कोई बच्चा नजर आए आपने खुद सलाम करना है। और आप नोट कीजिएगा, जिस बच्चे को आप रेगुलर सलाम करेंगे वो हमेशा आपको जवाब देगा, तो आप फिर वालेकुम अस्सलाम जो है, क्योंकि छोटा है ना बच्चा, आपने सिखाना है। हम हंसना शुरू कर देते हैं, हम मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं उस बच्चे का। एक और चीज जो इस उम्र में तरबिया के लिए बहुत अहम है, बच्चों में हया का कॉन्सेप्ट देना, ये बहुत अहम है कि आप जल्द अज जल्द उनको दें। इस वक्त अक्सर माओ को कोई फिक्र नहीं होती, लड़कों को खासतौर पर गर्मियों में शॉर्ट्स निकरें पहना रही होती हैं, और लड़कियों को बिल्कुल स्लीवलेस फ्रॉक होते हैं। आप देखिए उसको हयादार नहीं हम बना रहे। और क्यों हम ये शॉर्टकट, इसलिए कि हम कहते हैं आप कपड़े कौन सिए या किससे सिलवाएं, मतलब ये तो मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चों को फुल बाजुओं के कपड़े और चीजें पहनानी चाहिए, मुझे इतनी हैरत होती है, मैं अभी भी कई दफा बड़ी बच्चियों में भी देखती हूँ, जैसे 5, 6, 8 साल तक की बच्चियां, और माएं जो हैं वो बकायदा उन्होंने कुरान पढ़ा हुआ, समझा हुआ, और वो खुद इतनी कवर्ड होती हैं शादियों पे, फंक्शंस पे मैंने देखा, और बच्चियों को स्लीवलेस कपड़े पहनाए हुए, इसलिए कि फैशन है आजकल, और इसलिए कि आप ये सोचेंगे कि अभी इस पर फर्ज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखिए हया तो उसकी मुतासिर हो रही है ना। कई दफा घरों में ये होता है बच्चा नहा रहा है या बच्चे के आप कपड़े बदल रहे हैं, बच्चा ना नंगा भाग जाता है। अच्छा क्या करते हैं घर वाले सारे, शेम शेम शेम, और छेड़ते हैं, हंसते हैं, ये हंसने की बात है नहीं, आप उसको शह दे रहे हैं उस चीज पे कि ये बड़ा जी तुमने काम किया है। आप लिबास नहीं आपने पहना होता तो फरिश्ते आपके पास नहीं होते, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को तो भेजते हैं मदद करने के लिए, आपके हेल्पर्स चले गए हैं, फौरन कपड़े पहनो, पहले कपड़े पहनो फिर मुझसे बात करो। तो जब आप छोटे से बच्चे को भी ये कॉन्सेप्ट देंगे, और इसमें कोई हंसी मजाक नहीं, बच्चे को नहलाना है तो तब भी कोई अंडरवियर पहना के, कजन और छोटे बहन भाई जो हैं कपड़ों के बगैर के छोटे हैं, इकट्ठे नहा रहे होते हैं गर्मियों में खास तौर पे, कोई परवाह नहीं होती। और इसी तरह से इनके नहाने धोने का जो है सिस्टम, उसमें कपड़े बदलते वक्त जो है आपका सिस्टम, ये नहीं है कि 2-3 लोग खड़े हैं और दरमियान में ही आप कपड़े बदल रही हैं, और इसमें सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, दोनों के लिए एक चीज का ख्याल रखना है। इसी तरह शुरू से बच्चे के लिए खाना उतना बनाएं और उसको खत्म करवाएं, और आपने उतना ही डालना है और उतना ही उसको खिलाना है। हमारा दिल चाहता है बच्चे को इतना ढेर सारा हम किसी तरह खिला दें, हम जबरदस्ती डाल रहे होते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि भूख रख के खाने वाला, वो किधर गया। इनकी तरबियत में जो एक और चीज है, नजर की दुआएं पढ़नी, माओ को पता होना चाहिए कि उन्होंने नजर की दुआएं पढ़नी है, माओ को पता होना चाहिए उन्होंने सुबह शाम की दुआएं पढ़नी है। मैं ऐसी खातून को जानती हूँ जो जैसे रात को सोते वक्त अक्सर लोग बच्चों को वो लोरियां सुना रहे होते हैं, तो वो क्या करती थी कि अम्मा पारा जो था वो पढ़ती थी जब उसे सुलाती थी, तो वो जब उनके बच्चे ने बोलना शुरू किया तो उसने जो है वो सारी सूरतें जो थी उसको याद थी। तो हम क्या सिखाते हैं बच्चों को जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं, मामा पापा, और राइम्स कौन से सिखाते हैं, बाबा ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो सूरत अल फुरकान की आयात आती हैं उनके बारे में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पढ़ाई थी, वो सिखाएं पहले, फिर इसके बाद कलमा सिखाएं, इसी तरह दुआएं सिखाएं, और ये जैसे कुरान पाक की जो सूरतें, फिर हिफाजत की दुआएं जो हैं माओं को बताएं कि उनके लिए जरूर पढ़नी है, फिर ये कि झूठ नहीं बोलना बच्चे के सामने और बच्चे से। अच्छा तुम ये रखो मैं तुम्हें अभी टॉफी देती हूँ, टॉफी है ही नहीं हमारे पास, अच्छा चलो ऐसे करो उसको छोड़ दो अभी हम मार्केट जाएंगे आइसक्रीम खाएंगे, और दिल में पक्का इरादा है कि आइसक्रीम नहीं देनी, ये क्या हो जाएगा, ये झूठ होगा। अगर बच्चा शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से नहीं भी समझ सक रहा तो अल्लाह ताला के पास तो हमारा झूठ रजिस्टर हो रहा है, बच्चे की तरबियत में तो जा रहा है। और इसी तरह अगर हमें ये आदत है तो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको भी ये हम सिखा देंगे। अगर आपने नमाज पढ़नी है, अब छोटा बच्चा, हमने बात की थी कि बच्चा एक्टिव बहुत ज्यादा होता है, तो अब नमाज कैसे पढ़ेगी वो, अगर आपके पास कोई नहीं है, एक तो ये कि नमाज छोटी पढ़ लें और उस पर कभी मलाल नहीं होना चाहिए। मैंने अक्सर लड़कियों को देखा है कि जब बच्चा छोटा ऐसा है और उनको नमाज पढ़नी पड़ी है, वो कहती है नमाज तो मेरी खराब ही होगी इसकी वजह से। अब बच्चा साथ बैठा हुआ है, बच्चा सुन रहा है, अल्लाह ताला को पता है कि एक छोटा बच्चा है और 2 साल से कम है और उसकी आप परवरिश कर रहे हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, बच्चे की रोने की आवाज आए, कहा था कि छोटी सूरतें पढ़ो। दूसरा ये कि अगर बच्चे को साथ आपने रखा है या अगर आप अकेली हैं तो आप क्या करेंगी, आप बच्चे को गोद में उठाएंगी, उसी तरह नियत करेंगी, वो आपकी गोद में, वो आपकी गोद में बहुत आराम से रह लेगा। और जब आप इसी तरह रुकू और सजदे में जाएंगी तो आप उसको उतार देंगी, उसके बाद फिर उसको गोद में उठा लेंगी और आप पढ़ सकती हैं। तो उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरी नमाजें खराब हो रही हैं और मेरी तवज्जो बच्चे की उस पर नहीं हो रही और मैं कोई काम भी जो है ये नहीं कर पा रही। नमाज ना छोड़नी है और ना आपने उसमें जो है वो परेशान होना। ठीक है जी, यहां तक हमारे तरबियत के मेन मेन चीजें हैं इस वक्त तक जो कि हो गई। कुछ एरियाज और हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 साल के करीब आ जाते हैं तो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। टेंट्रम्स क्या होते हैं कि चीखना चिल्लाना, कोई उनकी मर्जी के खिलाफ काम हो जाए अब वो रोना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा। छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप मसलन मार्केट गई हैं और कोई खिलौना था या ये कि कोई और ऐसी चीज थी, आपने कुछ लेनी थी, कोई सामान लेना था, सौदे लेने थे, अब वो बच्चा आपके साथ है, अब उसने क्या किया, क्योंकि खिलौना पसंद कर लिया, उसने कहा मैंने ये लेना है, और आपने उसको कहा कि मतलब या तो बजट नहीं है आपका या आपको पता है जरूरत नहीं है इसको, इसके पास खिलौने इतने हैं, महंगा बहुत है, आपने उसको नहीं लेके दिया, उसने कहा मैंने ये लेना है, आपने उसको नहीं लेके दिया, बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करता है, आप कहती है नहीं मिलेगा, फिर बच्चा क्या करता है, چیزوں کا پھینکتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اور چیخنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کو لے دیتے ہیں, پھر اس کو پکڑا دیتے ہیں, غصے سے پیسے دے کے گاڑی میں مارتے مرتے ہیں, گھر آ کے بھی کہتے ہیں آئندہ نہیں لے کے آؤں گی اسے. یہ ٹینٹرم ہوتا ہے بچے کا. ڈیڑھ پونے دو سال سے لے کے ڈھائی سال تک بچہ جو ہے اس کو یہ ہم ٹینٹرمز ہوتے ہیں. اور یہ ٹینٹرمز وہ کہتے ہیں کہ جتنا اچھی طرح آپ ہینڈل کریں گے اتنی جلدی یہ ٹھیک ہو جائیں گے, اور جتنا آپ اس کو مس ہینڈل کریں گے اتنے زیادہ رہیں گے. اس میں کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچہ غلط ڈیمانڈ کر رہا ہے, چاہے وہ مارکیٹ ہے یا گھر ہے, بچے نے غلط بات کہہ دی کہ مجھے یہ چاہیے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کہنا ہے کہ بیٹا یہ نہیں مل سکتا. اگر آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہیں لے کے دینا تو آپ کہیں گے یہ نہیں مل سکتا. اب بچے نے رونا شروع کر دیا, آپ نے اس کو اس کے لیول پہ آئے اور اس کو پھر ایک دفعہ بتا دیا کہ یہ آپ کو نہیں مل سکتا, میں جا رہی ہوں, آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. پہلے اتنا تھا, اب اور زیادہ, کیونکہ وہ اب آپ کی لمٹ دیکھ رہا ہے کہ یہ کہاں پہ مجھے وہ چیز دے دیتی ہیں. اندر سے آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے لیکن آپ نے اپنی باڈی لینگویج کو بہت ریلیکس رکھنا. ذرا مشکل کام ہے لیکن ہو جاتا ہے یہ, کیونکہ بچے کی بہتری کے لیے ہے. اب آپ دکاندار پہ آئیں اور آپ نے دکاندار کو آ کے کہا کہ میرا بل بنا دے, وہ پوچھے گا, دکاندار تو خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہے بچہ رو رہا ہے, یہ میرا پیسے زیادہ چیز جائے گی. وہ کہے گا یہ بھی ڈال دوں؟ آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ڈالنا اس میں. وہ بچہ اور رو رہا ہے, چیخ رہا ہے اور وہ زمین پہ لیٹ رہا ہے. اور اگر گھر میں آپ ہیں, ایسی سچویشن ہے, تو آپ کوئی بات نہیں, آپ اپنا دوسرا کام شروع کر دیں. اس نے کسی چیز پہ لڑائی کی اور وہ لڑ رہا ہے اور وہ رو رہا ہے, اور آپ نے اس کو اگر سمجھا ہے کہ یہ چھری چاہیے, یہ چمچ چاہیے, ایسی چیزوں پہ بچے ایک دم وہ الجھ جاتے ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے, اور مائیں پہ کہتی لے لو لے لو, نہیں دینی نہیں ہے اس کو وہ چیز. اور اپنی باڈی لینگویج ریلیکس, ایسے اب آپ اس کے بعد ایسے ہو جائیں گے آپ کو آواز ہی نہیں آ رہی. آپ نے آرام سے پیچھے ہوئی, پیسے دیے, اب وہ چیخ رہا ہے, سارے لوگ آپ کو, اگر آپ بازار میں ہیں تو سارے, گھر میں ہیں تو تب بھی ہر کوئی سمجھ رہا ہے کتنی ظالم ماں ہے. اور آرام سے آپ واپس مڑے اور آپ نے صرف بچے سے کہا کہ آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ, میں جا رہی ہوں. اب وہ بچہ نہیں مجھے یہ چیز چاہیے, آپ آرام سے باہر نکل جائیں دکان سے. نظریں رکھنی ہے کہ بچہ آ رہا ہے, بچہ فوراً روتا 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 آپ کے پیچھے آئے گا. آپ آرام سے گاڑی میں بیٹھے, بلیو می 10 منٹ نہیں ہوگا بلکہ 5 منٹ آپ کی گاڑی آگے جائے گی, بچہ چپ. آپ نے بات ہی نہیں کرنی اس سے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو ہم اس کو کہتے رہتے, پھر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں, پھر چیز لے دیتے ہیں, پھر گاڑی میں آ کے ڈانٹتے ہیں, پھر بار بار اسے یاد دلاتے ہیں. آپ نے اس وقت اس طرح ایکٹ کرنا ہے کہ مجھے نہ تمہاری آواز آ رہی ہے نہ مجھ پہ کوئی اثر ہو رہا ہے, رو لو جتنا رونا ہے. اس کے بعد جب بچہ چپ کر جاتا ہے تو اس ٹینٹرم کے بعد بچہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے. جب ایگزاسٹ ہو جائے تو آپ اس کو اپنی گود میں لے لیں گی, اور جب آپ گود میں لیں گی تو آپ پھر اس کو لمبا لیکچر نہیں دیں گی, بیٹا ایسے نہیں کرتے, بیٹا چیزیں نہیں. آپ نے اس چیز کو یاد ہی نہیں کرانا, آپ نے صرف اس کو پیار کرنا ہے, اور جو چیز آپ دے سکتی ہیں یا کر سکتی ہیں آپ اس سے پوچھ لیں گی, مثلا یہ کھانا ہے چلو یہاں چلتے ہیں. اور آپ دیکھیں 2-3 ٹینٹرمز کے بعد بچے سیٹ ہو جاتے ہیں. اب وہ دوبارہ اس دکان پہ آئے گا نا, وہ یہ نہیں کرے گا. فیملی سسٹم میں سارے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ظالم ہیں اور آپ کیوں نہیں ایسے کریں, اور باقی لوگ اس کو توجہ دیتے ہیں, اس کی وجہ سے اس کا ٹینٹرم ٹھیک نہیں ہوتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کرنے دیں پھر ان کو ٹرائی. تو ساس کو بھی بہت آرام سے بتایا جا سکے کہ آپ صرف ایک ہفتہ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں, یہ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور دیکھیں بچہ آپ سے کیا سیکھ رہا ہے, دینی اعتبار سے صبر, نہیں تو ساری زندگی اس کی عادت رہے گی کہ میں نے چیخنا ہے, میں نے چلانا ہے, میری بات مان لی جانی ہے. اتنے نخرے, اتنی چیزیں, اسی لیے تو ہم لوگ کوئی دین کا کام بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری شخصیت ایسی بن گئی ہے جو میرا دل چاہ رہا ہے مجھے اسی وقت اور فوراً مل جائے. تو یہ ٹینٹرم سے آپ بتا رہے ہیں کہ غلط چیز نہیں ملے گی, یہ تربیت کا حصہ ہے, اور یہ بہت زیادہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے. یہ ضرور دیکھنا ہے کہ ٹینٹرم کب زیادہ ہوتا ہے, جب بچے کو نیند آئی ہو, بچے کو بھوک لگی ہو, بچہ بیمار ہو, تھکا ہوا ہو, بچہ بور ہو رہا ہو, بچے کو نارمل چیز پہ توجہ نہ مل رہی ہو جو مل جائے, تو پھر یہ ٹینٹرم زیادہ ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کا حل بھی کرنا ہے. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ماں بچے کو مارتی ہے اور کوئی اور اٹھا کے پیار کرتا ہوا لے جاتا ہے تو پھر کیا اس کا اثرات ہوں گے. پہلی بات ہے کہ ماں کو مارنا نہیں چاہیے, پہلا کام تو یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اسی لیے میں آپ کو یہ چیزیں کروا رہی ہوں, اگر آپ تربیت کے پہلو صحیح طرح سے کریں گے آپ کو مارنا نہیں پڑے گا. ہم مار دیں گے لیکن اس ٹینٹرم کو صحیح ہینڈل نہیں کریں گے. ایک اور لاسٹ چیز جو آپ کو اس عمر میں بتاؤں گی, پوٹی ٹریننگ. یہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ طہارت سے ریلیٹڈ ہے. پوٹی ٹریننگ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے بچوں کی, نہیں کرتے نا, کب کرنی چاہیے؟ بزرگ حضرات اکثر کہتے ہیں ہم اپنے زمانے میں وہ کپڑے کے بناتے تھے نیپی, ہم تو جلدی ٹرین کرتے تھے. آج کل کی مائیں گندا رکھتی ہیں بچوں کو, ٹریننگ نہیں ان کی دیتی, وچ از اے فیکٹ. بالکل صحیح کہتی ہیں, وہ سست مائیں آج کل کی, نہیں بچوں کو ٹرین کرتی. کب کرنا چاہیے ٹرین؟ जब न्यू बॉर्न होता है तब से आप सेट करेंगे। और हमारे जो पहले बुजुर्ग थे वो यही करते थे कि बच्चा न्यू बॉर्न होता था, रोता था तो उनको निशानी थी, रोने का मतलब है इसको अब इसने दूध पिया है, दूध पीने के थोड़ी देर बाद रो रहा है, अब इसको पिशी पॉटी आई है, वो खोलते थे और बाथरूम में ले जाके उसको करवाते थे, और उसके बाद बच्चे को आदत पड़ जाती थी। बच्चों को आप आदत डालेंगे तो अर्लीस्ट आदत डालनी है। हम उस वक्त अपने लेके बैठे रहते हैं, मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं पैंपर बांधो उसको। आपको तहारत के मसाइल इसमें पता होने चाहिए। उसके बाद बच्चों को ऐसी आदत पड़ती है कि वो थोड़े से में पैंपर जो है उनके खुलना शुरू हो जाते हैं। तो आप 3-3 साल तक बच्चे का पैंपर ही नहीं छोड़ते। इसमें आपने ये जरूर पढ़ना है, जो तरबियत वाली बहुत सी बुक्स में आपको ये सारे मसाइल मिल जाएंगे, यानी अगर छोटा बच्चा पेशाब करे तो कैसे तहारत उसकी होगी। आपने गोद में बिठाया हुआ एक बच्चे को, तो अगर उसने आपके ऊपर पेशाब कर दिया है तो फिर क्या होगा। अगर लड़का है तो छींटे मारने हैं, यानी शीरखार का मतलब है अभी आपने उसकी सॉलिड फूड नहीं शुरू की, सिर्फ दूध पे है। तो अब क्या है कि अगर वो आपके ऊपर पेशाब कर देता है तो आप ऐसे नहीं, आप परेशान बुरा हाल ये क्या कर दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, उसके बस छींटे मार देने। और अगर लड़की है तो उसका एक ही जगह गिरता है ना, उसको पकड़ा वहां से धो लिया कपड़े को, और जब वो खाना शुरू कर दे तो फिर अब वो लड़का और लड़की हो, जब एक दफा शुरू हो गया अब आप उसको पूरा धोना पड़ेगा, पूरी तहारत के साथ उसको साफ सुथरा जो है जो कपड़ा होगा उसमें आप फौरन इस तरह नमाज नहीं पढ़ सकते। एक बच्चा ऐसा है जो कह रही है कि जो किसी और के हाथ में देखता है वो उसको चाहिए होता है और वो खींच लेता है, क्या करना चाहिए। ये भी टेंट्रम की एक किस्म है ना। तो अगर आप उसको ये आदत डाल देंगे कि हर चीज तुम्हें मिल सकती है जो तुम्हारी नहीं, तो वो उसको आदत पड़ जाएगी। आपने उसको नहीं हर दफा हर एक ही चीज देनी, उसको ये बताना है कि हम अगले से पूछेंगे। जैसे बड़े बहन भाई का हमेशा खिलौना लेके उसको दे देते हैं, और बड़ा बहन भाई रोता रहता है कि मेरी चीज इसने खराब कर दी, ये तोड़ देता है, हम कहते कोई बात नहीं छोटा है ना छोटा है, नहीं आप उसे बताएंगे कि एक लिमिट तक तुम्हें कोई चीज मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। बच्चे को पॉटी कराइए, बच्चे को सही वॉश करना, और जो पॉटी सीट है उसको सही तरह से वॉश करना, उसमें चीज ना रहने देनी। अगर आप पैंपर पहना भी रहे हैं उसको भी टाइम पे बदलना। बहुत से इन्फेक्शन बच्चों को इस वजह से हो जाते हैं कि हम टाइम पे ये सारी चीजें जो हैं उनको ठीक नहीं करते। कई बच्चों से स्मेल आ रही होती है इतनी ज्यादा, क्योंकि वो टाइम पे उनके पैंपर्स नहीं चेंज किए जाते, या उनकी नैपीज नहीं बदली जाती, या उनके कपड़े अगर गंदे हो जाते हैं। तो इतनी सुस्त खवातीन है आजकल की कि वो बदलना नहीं चाहती, वो काम नहीं करना चाहती। हमने जो दीन इतना पढ़ा है ये इसका मतलब सिर्फ यही तो नहीं, एक जगह बैठ के आपने दर्स दे देना है, ये मकसद है सिर्फ इसका नहीं। आपने जो आप अपने बच्चे की तरबियत करेंगी, जो अपने फैमिली के बच्चों की करेंगी, जो अगली नस्ल को चीज सिखाएंगी, वो आपकी आगे से जो चीज पूरी जा रही है वो आपका दीनी मिजाज जो है ना वो वहां पे नजर आना चाहिए उन चीजों में। मैं आपको बिल्कुल मोटी मोटी जनरल चीजें बता रही हूँ, इस पे आप एक एक उम्र के ऊपर पूरी पूरी किताब पढ़ सकते हैं, और कुरान और हदीस पढ़ने के बाद आप जो है उससे रिलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे फिट इन होती है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अगली नस्ल को जो है इस तरह बेहतरीन तौर पर जो है पाल सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।